Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kaivalya Upanishad, presented by Swami Sri Dharmanandiji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bahut udas patni ne puchi ki bhai kya baat hai, itna udas, hatash, niras kyun? Ta kya batau? इस सारी समस्या का जड़ तू ही है. बोले मैं क्यों? तो जब शादी नहीं किया था तो आदमी पहलवानी करता था, एक हाथ से पेड़ को डाल को पकड़ के झुका देता था. अब तो दोनों हाथ से भी नहीं झुकता है, ऊपर में ही टंग जाता हूं. उसने कहा चलो देखूं जरा. पत्नी होशियार थी, पढ़ी लिखी, वो आप लोगों की तरह मुंबई की थी. अब जो है ना, उसने सभी बच्चों को ले लिया देखने के. बोली कि पकड़ो देखो. बोले देख मैं कह रहा हूं ना, कहां झुक रहा. सभी बच्चों को कहा कि पकड़ो, एक साथ पकड़े सब झुक गए. पत्नी ने कहा देखो तुम्हारी शक्ति ना विभक्त हो गई, सब पुत्रों में आ गई तो झुक गया ना. तो वह जो शक्ति होती ना विभक्त हो जाती है. हाँ, तो वास्तव में 70 वर्ष तक जो हमारे पास होता है ना उल्लास उमंग, सब जो है ना लूट जाता है, छीन जाता. तो संसार से कुछ मिलता नहीं, बल्कि जो होता वह भी छीन जाता है. इसलिए कह रहे कि विज्ञान करो, मतलब विविध प्रकार के ज्ञानों का विचार जब परीक्षण कर लेंगे तो आत्मा की अनुभूति हो जाएगी. इसलिए विज्ञान का प्रयोग किया. सुनिश्चित अर्था, अच्छी प्रकार से निश्चय कर लो कि संसार में कुछ भी नहीं, जो है भी वह एक न एक दिन छीन जाएगा. अब आप पूछो कम छीनेगा, कौन छीनेगा, किसकी हिम्मत, किसकी मजाल, तो इसके विषय में सभी जानते हैं. जब दादा पर दादा से सब छीन गया तो हमारे से भी छीनने वाला है. वह काल छीनेगा, काल कहो मौत कहो एक ही बात है, सब छीन जाएगा. जो मिला है यही मिला है, यही के लिए मिला है, साथ नहीं जाने वाला. ऐसा जब निश्चय हो जाएगा, ऐसा निश्चय होने के बाद फिर क्या होगा? कहते संन्यास योगात, अपने आप संन्यास हो जाएगा. संन्यास से आप घबराना नहीं. आप सोचते हो कि हमको भी ऐसा ना हो. हाँ, वैसी बात नहीं. संन्यास मतलब ईष्णात्रय का त्याग. ईष्णात्रय के त्याग को संन्यास कहते हैं. ईष्णात्रय त्यागो नाम संन्यास. और यह लक्षण सभी जगह घट जाता है. इस लक्षण में देखो ना ति व्याप्ति है, ना व्याप्ति, ना संभव, कुछ भी नहीं. दोषत्रय शून्य लक्षण है. क्योंकि ईष्णात्रय संन्यास गृहस्थ में भी घट जाएगा, सन्यासी में भी, ब्रह्मचारी में भी, मुनि में भी, सब में घट जाएगा. जिसने ईष्णात्रय का त्याग किया, ईष्णा मतलब चाह, जिसको तृष्णा कहते. वित्त को नहीं त्यागना बल्कि वित्त की इच्छा को, पुत्र नहीं बल्कि पुत्र की चाह को त्याग करना. ऐसे ही तीसरा क्या है? लोक. लोक नहीं, जहां जाएंगे वहां संसार तो होगा ही. लोक की चाह है, लोग हमारी वाहवाही करते रहे, तारीफ करें, मरने के बाद भी नाम लें, इसके त्याग को बोलते लोकेष्णा त्याग. तो वित्त, पुत्र, लोक, ये हमारे साधना के साधक हैं, बाधक नहीं. बल्कि जो एक बीच में ऐष्णा आ गई, लोक, वित्त और तीसरा क्या है, पुत्र, तीनों और हमारे के हम लोगों के बीच में एक ऐसा रूपी पतली सी दीवाल आ गई, जिस दीवाल के कारण आत्मा ओझल हो गई. कहते उस दीवाल को हटा दो. तो जैसे जीवन में ऐसा त्यागते हैं वैसे ही तत्काल आत्मानुभूति होती है. इसलिए संन्यास लिखा सम्यक प्रकार से. देखो संन्यास का एक तो अर्थ ये हो गया, सम्यक प्रकार से, न्यास मतलब त्याग. दूसरा संन्यास का अर्थ है सम मतलब सम्यक प्रकार से, न्यास मतलब स्थापना, बोलते हैं ना कि इसका न्यास करना, उसका न्यास, अंगन न्यास, करण न्यास होता है ना, अंगन न्यास, करण न्यास, हृदयादि न्यास से क्या करते हैं कि जो यह नियम है देवो भूत्वा देवा न्यजेत, यदि देवता की याजना करना है तो देवत्व का न्यास, न्यास मतलब स्थापना, आधान करते हैं अपने शरीर में, अंगों में, प्रत्यंगों में, मंत्रों से देवत्व का न्यास मतलब स्थापना, आधान करते हैं। ऐसी अच्छी तरह से जितने भी चाहे धन हो, लोक हो, या वित्त हो, पुत्र पौत्र हो, सबका न्यास कहाँ करना, परमात्मा में, कि सब परमात्मा के हैं, परमात्मा के लिए हैं, मैं भी परमात्मा कहूं, ये दूसरा संन्यास का अर्थ है। इससे मोह ममता से छुटकारा हो जाता है। दूसरी कसौटी योगार्थ है, योग, योग का अर्थ केवल आसन प्राणायाम तक नहीं है, बल्कि योग का तात्पर्य है ध्यान धारणा समाधि से। शरीर के लिए बहुत जरूरी है आसन, देश के लिए क्या चाहिए, शासन, और परिवार के लिए अनुशासन, तीनों बहुत जरूरी है ना, देश के लिए शासन, शरीर के लिए आसन बहुत जरूरी है। आसन करके देखो चौगुना ताकत बढ़ जाती है, आप करके ये देखना, एक महीना करना, करने के बाद ही तत्काल बहुत एहसास होगा बल का, ऊर्जा का, ताकत का, और दो दिन नहीं करना, देखना शरीर मुर्दे की तरह मुरझा जाएगा। तो शरीर के लिए आसन, देश चलाने के लिए शासन, और परिवार चलाना हो ना, बहुत जरूरी अनुशासन है। सबको छोड़ दो फ्रीडम स्वतंत्र तो नहीं काम चलेगा, फिर तो कहा होते ना बहुत जोगी मठ उजाड़ा, बहुत सरदार घर उजाड़ा, बहुत जोगी हो जाएंगे ना तो मठ उजड़ जाएगा, सब मंडलेश्वर बन जाए, महंत बन जाए, तो कौन मानेगा, मठ नहीं चल पाएगा। कोई बोलेगा 4 बजे घंटी लगे, दूसरा बोलेगा नहीं 2 बजे, तीसरा बोलेगा 6 बजे होना चाहिए आरती, तो नहीं चलेगा ना। और घर में बहुत सरदार हो जाए तो कहते घर भी चल नहीं पाता। तो यहां पर जो योग शब्द उसका अर्थ है कि आसन प्राणायाम तो बहिरंग साधन है, बहिरंग मतलब शरीर के लिए है, इंद्रियों के लिए है, मन शुद्धि के लिए, परंतु जब आप युजिर योगे का अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा से जिस ध्यान से मिलाते उसका नाम योग है, उसके द्वारा शुद्ध सत्व अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है, तब जाकर परमात्मा की उपलब्धि होती है। उपनिषद में नत्र भी आया है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथिना भी प्रमोक्षः। सबसे पहले आहार की शुद्धि होनी चाहिए, आहार का मतलब भोजन, मुझे पता था लोग बोलेंगे इसलिए पूछा। हाँ देखो नए नए श्रोता आगे निकल रहे हैं, आप लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, नए नए श्रोता जो है ना पुराने श्रोताओं से है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग भी बहुत दिन से सुन रहे हैं पर नए वाले नंबर आगे मार रहे हैं। आहार मतलब कि आर्यते क्रियते, ये भी इंद्रिय, इस सारी इंद्रियों से जो ग्रहण होता है उसका नाम आहार। आंख का आहार है रूप, कान का शब्द, त्वचा का स्पर्श, पैर का गमनागमन, हाथ का लेन देन, और मन का मनन, बुद्धि का निश्चय, ये सब आहार है। तो इंद्रियों के द्वारा जो विषय की उपलब्धि है इसी का नाम आहार है। जब आहार शुद्ध हो जाएगा तो शरीर कैसा तंदुरुस्त होता है कि नहीं बताओ। बढ़िया यदि भोजन सात्विक करें, पौष्टिक करें, तो अच्छी निद्रा भी आती और तंदुरुस्ती भी। ऐसे ही ये तो खाली मुख का बताया, अच्छी प्रकार से मुख में आहुति डालें, सात्विक भी हो पौष्टिक भी हो, चटक मटक ना हो, सात्विक पौष्टिक हो, तो फिर शरीर स्वस्थ रहता है, निद्रा अच्छी आती, मन प्रसन्न रहता। ऐसे ही इस कान का हार है। कान का हार क्या है? मीठे मीठे वचन को नहीं सुनना, उससे तो आसक्ति वो ममता होगी, और वही जब कड़वा बोलेगा बोलेगा बस कल से नहीं, ऐसा बोलने का, वही जो आपका लाडला, तो पीड़ा होगी। तो कान का हार है सत्संग स्वाध्याय सुनना। जैसे बाजार में 56 प्रकार के व्यंजन मिठाइयां तरह तरह के होते हैं ना, उसमें से बुद्धिमान शुद्ध सात्विक चुनता चुनाव करता है, जो देसी गौरांग घी से बना हुआ हो इसमें मिठास कम उसको खरीदता है। ऐसे ही शब्द का बाजार लगा है। इस शब्द के बाजार में सबसे बढ़िया शुद्ध सात्विक जो कान का हार है ना, वह नंबर वन का है वेदांत श्रवण। इसके बाद फिर आगे भागवत आदि का श्रवण आता, फिर अन्य चीजें आती। तो इस कान का सबसे शुद्ध आहार है वेदांत श्रवण, भगवान का भजन कीर्तन सुनना। जीभ का आहार क्या है? जीभ का आहार है स्तवन कीर्तन नाम जप करना। बुद्धि का आहार है सद्विचार सद्चिंतन, है ना। आंख का आहार है क्या? आहार रूप, रूप नहीं स्वरूप, स्व जोड़ दो। हाँ, वैसे रूप का भी स्वरूप होता है, रूप का अर्थ जहां पर आता ना दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र में कि क्या है जी, रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशो जही, बार बार करते। तो रूपम का अर्थ वहां ये रूप नहीं है। अब बताओ किसी अरबपति खरबपति के पास गए और बोले मुझे 5 रुपया दो, तो क्या सोचेगा वो? देखो 5 रुपया तो कहीं मिल जाता, मेरे पास आप पास आकर 5 रुपया मांग रहा। तो चमड़े के रूप वहां प्रार्थना नहीं किया है। रूप का अर्थ स्वरूप, हे देवी हे शक्ति हे ब्रह्म विद्या, जो हमारा स्वरूप है, जो संसार में मैं भटक रहा हूं उससे हटा करके असली स्वरूप को देही मतलब प्रदान करो। जयम देही, जय का शत्रुओं से विजय नहीं, बल्कि जय मतलब कि जो काम को मतलब शत्रु है जिनसे मैं संसार में हमेशा हारता रहा उससे विजय दिलाओ। इसके बाद क्या है? हाँ यश, यश मतलब कि ब्रह्म विद्या जनित प्रतिष्ठा मिले। और द्विशो, द्विशो मतलब कि जो ये जो हमारी इच्छाएं हैं ये उपासना से द्वेष करती है। इच्छा मतलब वासना, इच्छा का बड़ा हुआ रूप है वासना। अव्यक्त होने पर इसका नाम होता है इच्छा, और छुपी हो तो कहते वासना है, वही चीज है। जब अंतःकरण में छुपी हो तो कहते वासना, और जो बैखरी से निकल जाती है तो कहते इच्छा। ये जो वासना इच्छा तरह तरह के ना, ये जो हमको हमेशा ब्रह्म विद्या सद्वेत से दूर ले जाते, इनको जही नष्ट करो, ये तात्पर्य। तो यहां पर भी आंख है ना, आंख से क्या देखें? रूपम रूपम प्रतिरूप, प्रत्येक रूप में परमात्मा की झलक। ये श्याम सुंदर, ये राम है, ये ब्रह्म है, ये हो गया आंख का आहार। अब क्या बच गया? त्वक का। तो त्वचा से स्पर्श करना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया दृष्टांत है भगवान राम का। ये अक्सर मैं दिया करता हूं, प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मातु पिता गुरु आगे ना वही माता। प्रातः काल उठ करके सबसे पहले माता पिता गुरु बड़े बूढ़ों के चरणों का स्पर्श करना, इस सबसे बड़ा त्वगिंद्रिय का हार है। प्रातः काल सोने के पूर्व दो समय, इस सात्विक हार है। इसके बाद में क्या बच गया? पैर का। अब पैर का हार है जो भगवान के मंदिर की परिक्रमा, या जो अपने घर से यहां तक पैदल आते हैं ना, वह भी एक पैर का सबसे बड़ा सात्विक आहार है, और हाथ का आहार है सत पात्र में दान देना। देखो धन का तीन उपयोग है, क्या क्या है? भोग, नाश और दान। तो भोग मतलब कि अपने लिए संसाधन इकट्ठा करना, इसका नाम भोग है। इससे क्या होता है? तो भोगे रोग भयम, जरूरत से ज्यादा यदि आप धन का उपयोग अपने शरीर के लिए संसाधन के लिए करेंगे तो रोग, भोगे रोग भयम, ये तो प्रत्यक्ष है ना। जिस समय एसी आदि की व्यवस्था नहीं थी, इतने पंखे लाइटें नहीं थी, हमारे इंद्रियों में बहुत अधिक सामर्थ्य था, बल था। अब बहुत सारी सुविधाएं हो गई तो जरा चार घंटा लाइट ना हो, पंखा ना हो, बिजली ना हो, देख लेना परेशान हो जाते, कुछ तो बीमार भी हो जाते। परंतु पहले जब ये व्यवस्थाएं नहीं थी तो इंद्रियों में क्षमता थी, बल था, कुछ नहीं होता था। अच्छा, ओहो, चलो तो देखो इसको बोलते भोग, इससे रोग होता। और तीसरा है आप होशियारी करो, तिजोरी बंद करके रखो तो क्या होगा? नाश। पता नहीं तिजोरी की चाबी किसके हाथ लगेगी, वो कहां जाएगा। और उत्तम श्रेणी दान, दान करते सत्कर्म में उपयोग करना या ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्रीति के लिए विनियोग करना, ये दान है। तो जैसे धन की तीन गति, वैसे शरीर की भी तीन गति, इंद्रियों की तीन गति। आप इंद्रियों का यदि उपयोग करेंगे परमात्मा के लिए, कान से सत्संग सुनना, जीभ से नामोच्चारण करना, मन से भगवान का चिंतन करना, बुद्धि से भगवान का निश्चय करना, पैर से भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा करना, हाथ से दान आदि करना, ईश्वर की आराधना करना, इससे क्या होगा? इससे जो है ना परमार्थ की उपलब्धि, ये तो उत्तम दान हो गया ना। समय का दान, इंद्रिया का दान, मन का दान, बुद्धि का दान, सभी का दान हो गया। अच्छा, इसके विपरीत संसार में करेंगे उपयोग इसको भोग कहेंगे, और कुछ भी नहीं करेंगे, आराम से ऐसी चला के सोए रहेंगे तो एक न एक दिन तो यमराज कहेंगे चलो बहुत सो लिए, स्वर्ग लोग चलो या किसी और लोग चलो। तो इसी का नाम है शुद्ध सत्व, मतलब इंद्रियों से जो आहार ग्रहण करते हैं, मतलब विषय, उसकी शुद्धि बहुत जरूरी है। वह शुद्ध हो जाएगा तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध होने से फिर जानते क्या होगा? हाँ, स्वरूप ज्ञान तो है ही, अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, अविद्या है ना उसकी निवृत्ति हो जाएगी, इसलिए शुद्ध सत्व कहा। ते ब्रह्म लोकेशु परांत काले, ते मतलब वे जिन्होंने कि सबसे पहले वेदांत का श्रवण किया, फिर निश्चय किया कि आत्मा क्या अनात्मा किया, फिर ऐषणात्रय को त्यागा, फिर योग मतलब कि जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए मन निध्यासन किया, ऐसे यतया मतलब प्रयत्नशील शुद्ध सत्वा जिसके अंतःकरण शुद्ध हो गए हैं वे लोग ब्रह्म लोकेशु परांत काले। परांत यहां अंत काल का पर विशेषण लगा दिया। हाँ, अंत काल उसे कहते हैं स्थूल शरीर के साथ विशिष्ट चैतन्य का जो वियोग है उसका नाम अंत काल है। जो हमारा स्थूल शरीर है इसका जीवात्मा के साथ मतलब विशिष्ट चैतन्य का जो वियोग हो जाता उसका नाम अंतकाल है। और परांतकाल बोलते हैं पर मतलब आत्यंतिक, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, तीनों के साथ जो हमारे संबंध का वियोग है इसी का नाम परांतकाल है। क्योंकि तत्व ज्ञान से देहत्रय का नाश, तत्व ज्ञान से ये जो देहत्रय के नाश को विदेह कैवल्य बोलते हैं, और बिना तत्व ज्ञान के मन का नाश होता ही नहीं। तो परांत काल में मतलब कि तत्व ज्ञान हो जाने के बाद ब्रह्मलोक में परामृता, तो अमृत का विशेषण भी पर लगा दिया, अमृत का विशेषण पर लगाया, क्योंकि मृत अमृत ये हमारे बुद्धि की कल्पना है, पर जो पर है ना वही शुद्ध अमृत है। मृत मतलब कि शरीर को छोड़ देने के बाद कहते मर गया, और अमृत का अर्थ हम लोग करते हैं कि स्वर्ग लोक को उपलब्ध हो जाना, पर यहां परामृत है। परामृत मतलब कि जिसकी अपेक्षा स्वर्गादि लोक का अमृत और इस लोक में जो मरण है ये दोनों भी, हाँ दोनों से अलग विलक्षण सर्वोत्कृष्ट अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना, यही परामृत है। परिमुच्यंती, परिमुच्यंती का भी देखो परि लगा दिया, परि मतलब कि जो संसार से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता। आपके पास एक चीज नहीं है, वह चीज आ गई तो उससे आपको राहत मिल गई, जैसे चीज मिल गई दूसरे चीज की चाह हो गई। बाजार में गए 50 चीज खरीद के लाए और घर में बैठी श्रीमती जी ने कहा रे ये तो लाए नहीं वो तो लाए नहीं, फिर भागो। तो 50 चीज से छुटकारा मिल गया, फिर 10 चीज बाकी रह गए फिर गए। पर परिमुच्यंती कार्ते संसार के सारे चीजों से जो भी चीज है सबसे छुटकारा हो जाना, परम हाँ जीवन मुक्ति परम ज्ञान की उपलब्धि हो जाना। अब कहा कितने लोग, जैसे कि प्रधानमंत्री एक समय एक ही बन सकते, राष्ट्रपति एक समय में एक ही बनेंगे, परंतु यहां सभी बन सकते, कितना ही प्रयास करो परंतु एक समय में एक देश का एक ही प्रधानमंत्री एक ही राष्ट्रपति, उसी पार्टी के लोग भी 10 उम्मीदवार होंगे तो 9 को छांट देंगे, बोले तुम नहीं ये बनेगा, होता है कि नहीं। बेचारा मेहनत करके पार्टी को जितवाया, स्वयं भी जीता, और जब दूसरों से जीत गया तो अपने पार्टी वालों से संघर्ष करो पद के लिए, होता है कि नहीं। पर यहां ऐसा कुछ नहीं, ये निरापद है, एक साथ में इस पद में हजारों लाखों सर्वे लिख दिया सभी मुक्त हो सकते। तो बढ़िया ये है कि दुनिया का पद, जो दुनिया का पद है वह आपद ग्रस्त है, पक्की बात है, कोई न कोई आपदा चक्कर लगा रही, वो देख रही कब मौका मिले इसको गिराऊं। पर यह जो ब्रह्म पद है निरापद है, कोई आपदा नहीं, तो निरापद परम पद को उपलब्ध हो जाता है। चलो शेष कल विचार करेंगे। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय शिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।